मन शत्रु संग सांझ बनाई, दिवस रैन रहे विपत समय। सदा अधीर शांत नहीं पाए, जो तीन लोग संपत घर आए। इससे भी स्पष्ट निर्णय हमारे मन के बारे में क्या हो सकता है। जिस मन की इच्छा पूरी करने के लिए, या यूं कहें कि मन में जो इच्छा की तरंग उठती है, उसमें से हम कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी पूर्ति के लिए संसार में कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। हमको अपनी बेचैनी का एक ही स्रोत पता है कि मन के अंदर जो इच्छा उठती है, यदि मैं उसको पूरी ना करूं तो मेरे अंदर बेचैनी बनी रहती है। तो ये जो मेरा जीने का तरीका है, इसके बारे में प्रभु खुद वाणी के रूप में निर्णय कर रहे हैं कि मन शत्रु संग सांझ बनाई, दिवस रैन रहे विपत समय। तो जीव के लिए अर्थात मेरे लिए मन का जो ये संकल्प है इच्छा रूप में, ये शत्रु है। शत्रु क्यों है? शत्रु इसलिए है कि ये मुझको बेचैन करता है, और इस बेचैनी को दूर करने के लिए मैं अपने मानव जीवन का सबसे कीमती वक्त उसमें खर्च कर देता हूं। और ये ऐसा शत्रु है जो मित्र कभी बन ही नहीं पाता, हमेशा शत्रु ही रहता है, और जिसने मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी, पूरा सारा समय जिंदगी का खा गया। ये तो ये शत्रु कहीं दूर नहीं है, मेरी देह के अंदर ही मौजूद है, जिसको हम मन कहते हैं। तो यदि संसारियों से बात करो तब तो यही कहेंगे, पता नहीं कौन से पागल जैसी बात कर रहे हैं। लेकिन वाणी को कैसे चैलेंज करोगे? वाणी तो मनुष्य की चीज है ही नहीं, ये तो सीधी प्रभु की देन है, प्रभु के द्वारा ही लिखाई गई है हमारे वास्ते, हमको सही रास्ता दिखाने के लिए ये हमारे वास्ते हमारे समय में सामने आई। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मन शत्रु क्यों है? कहते हैं कि दिवस रैन रहे विपत समय, दिन रात मुझको विपत्ति में ही घेरे रखता है, मेरी विपत्ति का छुटकारा मौत आने तक कभी हो ही नहीं पाती। तो इसकी पहचान कहते हैं सदा अधीर शांत नहीं पाए। इसकी पहचान यह है कि मैं सारी जिंदगी हमेशा बेचैनी रहता हूं, अधीर ही रहता हूं, शांति मुझको नहीं नसीब होती, जिसे शांति की बात सत्पुरुष करते हैं, या जो मैं चाहता हूं जिसका मुझे पता नहीं। मुझको एक ही शांति का पता है, जिस इच्छा के कारण मैं बेचैन हूं, वो इच्छा मेरी पूर्ण हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं, बड़ी डिग्री है मैंने पढ़ाई लिखाई करके हासिल की है, लेकिन ये बात तो एक बच्चा भी जानता है और आप भी जानते हो कि बच्चे के मन में कोई इच्छा उठ जाए रोना पीटना शुरू कर देता है, और जब तक माता पिता उसको पूरी नहीं कर देते वो रोता ही रहता है। तो यही मेथड यदि मैंने भी धारण कर लिया जीवन में संसारी जीवन जीने का, तो बच्चे जैसा ही तो मेरी बुद्धि हो गई, कौन सी अकल वाली बात है। कहते जो तीन लोग संपत घर आए, तीन लोग का मतलब संसार में जो भी आपकी कल्पना बुद्धि कर सकती है, सोच सकती है कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शांति मिल जाएगी मुझको। कहते हैं जो तीन लोग संपत घर आए, पूरा त्रिलोक का राज्य भी तुझको दे दिया जाए, लेकिन तेरा जो मन शत्रु है इस देह के अंदर, वो तेरा शत्रु ही बना रहेगा, वो तेरा मित्र कभी बन ही नहीं पाए। अब आप सोच लो, आप संसार में आकर बाहर संसार में क्या करना चाहते हो, क्या कर लोगे? तो इसीलिए वो कहते हैं कि मन की भरमन ना मिटे, जो अत संपत घर पाए, मंगत बिन हरि नाम के नित त्रिखा अधिकाय। अब ये निर्णय है, मन की भरमन ना मिटे, जो अत संपत घर पाए, मंगत बिन हरि नाम के नित त्रिखा अधिकाय। तो ये तेरे मन की जो प्यास है ये और गहरी हो जाएगी यदि तूने अति संपत्ति इकट्ठी कर भी ली, वो तुझको प्रभु ने दे भी दी, प्रारब्धवश दे दी तुझको, तो बिना हरि नाम के ये मन तेरा कभी पीछा छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये भूत के समान है। वाणी कह रही थी कि वांग भूत नित नाच नचाए, मूरख जीव सदा दुख पाए। भूत की तरह से ये पीछे पड़ जाता है और ये जीव को नाच नचाता रहता है। तो अब बताइए, यदि मैंने बुद्धि नहीं सतबुद्धि धारण नहीं की, तब ये भूत मुझे नचाता रहेगा और संसार में सारा जीवन मेरा नष्ट कर देगा और मुझे रिजल्ट के रूप में बेचैनी और निराशा के अलावा कुछ भी प्राप्त होना नहीं है। तो इससे ज्यादा सरल, इससे ज्यादा स्पष्ट निर्णय वाणी का क्या हो सकता है। इसमें तो बिना बुद्धि लगाए ही बात समझ में आ जा रही है, उसके शब्द ही इतने सरल हैं। लेकिन मेरा विश्वास तो कहता हूं मेरा गुरु पर है, मेरा विश्वास वाणी पर है, लेकिन कभी भी इतनी सरल वाणी को भी मैं मनन करने की, उस पर विचार करने की जरूरत नहीं समझता। इसलिए मेरी बुद्धि के निर्णय वही बने रहते हैं जो आम संसारियों के होते हैं, अर्थात मन में जो इच्छा उठी उसके कारण मैं दुखी होता हूँ और फिर बुद्धि का उपयोग उस इच्छा को पूर्ति के लिए, उसके लिए साधन इकट्ठे करने में करता हूँ और वक्त मेरा खत्म हो जाता है। और रास्ता वो एक ही बता रहे हैं, मंगत बिन हरि नाम के नित त्रिखा अधिकार। बिना प्रभु के नाम के भजन के, बिना प्रभु की याद के ये तेरी प्यास और अधिक बढ़ जाएगी, अर्थात रोग तेरा और गहरा हो जाएगा, चैन तो ये नहीं मिलेगा। तो हम जो सोचते हैं कि सिमरन तो मैं कर नहीं पाता, हो नहीं पाता, क्या करूं, वक्त ही नहीं है, तो घर में खाली बैठकर भी कहीं यात्रा कर रहा है तो यात्रा जिस व्हीकल में कर रहा है, जिस ट्रेन में कर रहा है, वहां बैठे हुए भी तू संसार को तो याद कर सकता है, बिना रुके याद कर सकता है, प्रभु को याद तो नहीं कर सकता। जो चीज मुझे बेचैन करती है उसको तो मैं निरंतर याद कर रहा हूं, जिसके द्वारा मुझे चैन मिलना है उसकी मुझे याद ही नहीं आती। इसका मतलब मेरी बुद्धि जो है वो पूरी तरह से सांसारिक बुद्धि है, ये आध्यात्मिक बुद्धि नहीं बन पाई है, क्योंकि मैंने इन बातों पर, इन सरल बातों पर भी कभी भी विचार करने की गहराई से कोशिश नहीं की। मेरे बारे में सत्य ही है, इसलिए मेरी बुद्धि का निर्णय कभी बदल ही नहीं पाया। यदि कभी भी सफलता मिली, कभी भी शांति मिली, तो वो संसार में ही मिलेगी, संसारी तरीके से जीकर ही मिलेगी। ये जो मेरी बुद्धि का निश्चय है, ये मेरा कभी बदल ही नहीं पाया सत्य मेरे बारे में। यदि बदला होता तो हर दिन हर घंटा मैं अपने लिए जीता हूं, भले ही मैं कहता रहा हूं मैं परिवार के लिए जी रहा हूं, जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं, लेकिन सत्य यह है कि मैं अपने लिए ही जीता हूं, क्योंकि परिवार भी वो मेरा है, उस परिवार से मैं सुख भोगता हूं, मुझको खुशी मिलती है, वो दूसरा नहीं है, वो मैं ही हूं। तो यदि मैं सोचने को तैयार नहीं हूं तो विचार कर लीजिए, ये मन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप एक नियम बना के सिमरन भी कर लो, नियम बना के सत्संग भी श्रवण कर लो, और चाहे भले आप ईमानदार भी बन जाओ, लेकिन ये मन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके लिए बुद्धि का निर्णय फाइनल होना ही चाहिए कि बिना ईश्वर भक्ति के, बिना ईश्वर की तरफ आगे बढ़े हुए मेरी मानसिक बेचैनी से कभी मुक्ति संभव नहीं है। तो पूरा जन्म मैं परेशान होता रहूंगा, बाहर का संसार हमको मालूम है कि मेरे हाथ में नहीं है, अनिश्चित है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। जो सबसे प्रिय है मेरा, जिस पर मेरी लाइफ निर्भर कर रही है, वो कल को जिंदा रहेगा भी नहीं रहेगा, यह भी मुझे नहीं मालूम। तो इतनी टेम्परेरी दुनिया में मैं कैसा निश्चिंत होकर अपना जीवन खत्म कर रहा हूं अपने दोनों हाथों से, मुझको इस बात का होश ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए फाइनल बात वो एक ही कह रहे हैं कि मंगत बिन हरि नाम के नित त्रिखा अधिकाय। बिना हरि नाम के तेरी ये जो प्यास है भोगों की, संसारिक सुखों की, ये और गहरी हो जाएगी और बढ़ जाएगी, और इस बढ़ी हुई बीमारी को लेकर तू संसार से विदा होगा। तब अगले जन्म में तेरी क्या दुर्दशा होगी और सोच ले, इस जन्म में जो हो रही है वो तो हो ही रही है, अगले जन्म में और कितनी अधिक गहरी तेरी दुर्दशा होगी इसका विचार करके देख ले, इसका निर्णय करके देख, क्योंकि ये बढ़ाकर तू जा रहा है। संसार में जितना भी वक्त तूने लगाया है, पैसा कमाने में, परिवार पालने में, जो कुछ भी काम किए हैं तूने, इसने तेरे मन की बीमारी को और गहरा कर दिया है। अब इस गहरी बीमारी को लेकर तुझे अगला जन्म मिलेगा तो वहां कितना तड़पेगा जब इसी जन्म में तू परेशान रहा। इसलिए बुद्धि से यह निर्णय करना ही पड़ता है, और इसका आधार केवल एक ही है, वो ईश्वर है आधार। कि मनुष्य की बातों पर तो हम विश्वास करते हैं, नहीं भी करते, लेकिन ईश्वर की बात पर विश्वास ना करना फिर अपनी दुर्दशा को दावत देना है, फिर कोई संसार में बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ईश्वर की बात पर ध्यान दें। तो वो कहते हैं कि मंगत बिन हरि नाम के नित त्रिखा अधिकाय। तो हरि का नाम का मतलब क्या होता है? हरि का नाम का मतलब होता है कि हरि का संग करना और संसार के संग का धीरे धीरे त्याग करना। तो प्रभु का संग करोगे कैसे? प्रभु तो दिखाई नहीं पड़ते, प्रभु जानते हैं। मन संग करता है ना, संसार का संग करता है, और बिना वस्तु के संग करता है। जब मन में संसार की याद आ रही है तो वस्तु कहां है? मन उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्यासा है, मैं तड़प रहा हूं, बेचैन हो रहा हूं, वस्तु कहां है वो? तो मन के अंदर वस्तु की प्यास पल रही है। तो उसी प्रकार बुद्धि का निर्णय जब बदलता है तो मन के अंदर प्यास प्रभु की पलती है। तो इस ये जो मन है वो वस्तु का संग नहीं, प्रभु का संग करने लगता है। इसीलिए प्रभु अवतार लेते हैं। वैसे तो प्रभु दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए प्रभु ही अवतार लेते हैं मंत्र रूप में। इसलिए महाराज जी के अंदर ही अनुभव के रूप में वो मंत्र प्रकट हो रहा है। अनुभव तो ईश्वर का ही होता है ना, सतपुरुष को अंदर किस चीज का अनुभव होगा? वासना तो है ही नहीं वहां पर, वो प्रभु का ही अनुभव करते हैं, और वो प्रभु ही मंत्र रूप में अवतार ले रहे हैं। जैसा कि हम कई बार सुन चुके हैं, महामंत्र 3 दिन में प्रकट हुआ, और ये सर्व सिद्धि दातार है, और गारंटी ले रहा है, वो वाणी गारंटी ले रही है, कलह कलेश सब दूर हो गए। कलह कलेश मन में ही तो है हमारे, गारंटी ले रही है सारे कलह कलेश तेरे खत्म हो जाएंगे। कलह कलेश सब दूर हो गए, पाए ज्ञान तत्व योग, ज्ञान तत्व ब्रह्म को कहते हैं, उसमें तो स्थित हो जाए। मंगत तत् अक्षर नित गाइये प्रभु दर्शन हो सके। ये तत् अक्षर को यदि तू जाप करेगा, ईश्वर का अवतार जानकर प्रेम से जाप करेगा, कहते हैं प्रभु दर्शन हो से, तो तुझको अगली स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो मंत्र से आगे की स्थिति है, वो भी अवतार ही है। याद रखिए, जो प्रभु पूर्ण रूप है उनका नाम ब्रह्म है, उनका नाम परमेश्वर है, लेकिन मुझको प्रभु के अगले अवतार के दर्शन होते हैं, अंदर अगले अवतार का अनुभव होता है। लेकिन मैं यदि पहली दूसरी कक्षा पढ़ाई नहीं, प्राइमरी एजुकेशन मैंने की ही नहीं, अल्फाबेट ही नहीं सीखे, तो लैंग्वेज कहां से सीख लूंगा, डिग्री कहां से हासिल कर लूंगा? तो इसीलिए जो संसार की याद है मन जो हर वक्त करता रहता है, तो बुद्धि का निर्णय जब बदलता है तब वो बुद्धि कोशिश करती है मन को मंत्र में लगाने का के लिए, यही कहिए ईश्वर का संग करने के लिए, क्योंकि मंत्र साक्षात ईश्वर है, लाइव गॉड है, आत्मा का स्थूल रूप है। महर्षि रमण लिख रहे हैं, अपनी कलम से लिख रहे हैं कि मंत्र आत्मा का स्थूल रूप है। तो आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसका स्थूल रूप, उसका आप संग कर सकते हो, इसलिए प्रभु अवतार लेते हैं। तो आज घोर कलयुग में भी प्रभु ने इस महामंत्र के रूप में अवतार लिया, और हमारा भाग्य है कि जिस गुरु के मुख से यह मंत्र प्रकट हुआ, जिसकी कलम से यह लिखा गया, वो प्रभु हमारे काल में हुए, वो गुरु हमारे काल में हुए, आज हमको विश्वास, उनकी वाणी पर विश्वास। हमारा मन नहीं कहता कि वाणी झूठ बोल रही है, हमारा मन कहता, हमारी बुद्धि कहती है कि वाणी 100% सत्य बता रही है, भले ही मैं उस पर चलूं या ना चलूं, ये निश्चय हमारी बुद्धि में बना हुआ। तो इस निश्चय का मैं फायदा क्यों नहीं उठाता? तो मैं मन का तो संग करता हूं जो मुझे परेशान करता है, जो मेरी जिंदगी बर्बाद करता है, और अंतर्यामी ईश्वर का संग मैं नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु ने अवतार लेकर महामंत्र के रूप में वाणी उसकी प्रकट की, जिस मंत्र को जाप करने का तरीका भी हमको प्रभु ने व्यवस्था कर दिया, सिखा दिया। अब मैं मौन होकर संसार की याद करने के बजाय प्रभु की याद मंत्र के रूप में क्यों नहीं कर सकता? जिस समय काम कर रहा हूं, मान लिया मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो मजबूरी है मेरी कि पूरी बुद्धि वहां लगानी ही पड़ेगी, पूरा मन वहां लगाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये हर समय क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो? तुम तो जिस समय खाली होते हो उस समय भी संसार को याद करते हो। तो यदि इसका महत्व मेरे बुद्धि में बैठा हुआ है और इस विज्ञान को मेरी बुद्धि ने एक्सेप्ट किया है, तो आप मन की चिंता छोड़ के या मन का चिंतन छोड़ के आप बुद्धि का जो निर्णय है, वाणी का जो मार्गदर्शन है, उसके अनुसार सीधे सीधे जब संसारी काम में नहीं इन्वॉल्व हो आप, तो सीधे प्रभु के चरणों में लग जाओगे आप। महामंत्र आपके अंदर चलेगा, प्रभु का संग अंतर्यामी, प्रभु का संग आप निरंतर कर सकते हो। और नहीं भी कर रहे हो तो संसार के काम कर रहे हो, लेकिन आपकी बुद्धि में महत्व ईश्वर का बना हुआ है, तो संसारी काम करते हुए भी आपका मन प्रतीक्षा करता रहेगा, कब ये काम खत्म होगा, तब मैं प्रभु का संग करूंगा। महाराज कहते प्रेमी, इनडायरेक्टली ये ईश्वर प्रायणता ही है कि संसारी काम करके मैं जल्दी से जल्दी प्रभु की याद करना चाहता हूं। ये ईश्वर प्रायणता ही है क्योंकि मेरा मन ईश्वर की तरफ झुक रहा है। क्यों झुक रहा है? क्योंकि बुद्धि का फाइनल निर्णय हो चुका है कि ईश्वर के बिना मानव जन्म पूरी तरह से बर्बाद ही है। मैंने कुछ नहीं किया बल्कि एक बीमारी बढ़ाकर मैं संसार से विदा हो रहा हूं। तो इसलिए जिसकी बुद्धि का निश्चय ऐसा हो जाता है और जो प्रेम से मंत्र को साक्षात ईश्वर जानकर उसका संग अंदर करता है, तो फिर उसकी अगली स्थिति प्राप्त होती है जिसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण या नाद का जागरण। तो फिर प्रभु उसको अगली सीढ़ी पर ले जाते हैं। फिर वो चीज ऐसी है, मुझे याद करने नहीं पड़ती, वो होती रहती है। लेकिन ध्यान यदि आपका उधर नहीं है, संसार की तरफ है, तो फिर वहां से आपसे लोप हो जाएगी। उसके लिए भी ध्यान तो आपको वापस लाना ही पड़ेगा, अंदर ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन आपके वो अनुभव में है, आपको याद करना नहीं पड़ रहा है, इतना उसमें अंदर परिवर्तन हो जाता है। तो जिस प्रभु को आप जानकर याद करते थे, अब वो प्रभु आपका संग छोड़ ही नहीं रहे। लेकिन फिर भी जब तक मैं अगर ध्यान दूंगा नहीं, संसार की तरफ ध्यान रहेगा, तो वो भी गायब रहेगा। तो ध्यान आते ही वो प्रेजेंट है, आपके अनुभव में है, तो इसीलिए प्रेम से उसकी याद आगे आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से अंतर्यामी ईश्वर का संग, देखिए प्रभु ने सारी व्यवस्था कर रखी है। मन जो भूत कह रहे हैं, वाणी कह रही है, मन ये भूत है, शैतान है, उसका तो संग कर रहा हूं अज्ञानता के कारण। लेकिन जो ईश्वर अमृत रूप है, प्रेम रूप है, आनंद रूप है, शांति रूप है, उसका संग मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि बुद्धि का निर्णय मेरा ठीक नहीं। तो इसलिए वाणी इसीलिए आई है कि वाणी निर्णय दे रही है। कितना कितना सरल निर्णय है मन के बारे में, इन 5 पंक्तियों में इस मन के बारे में कितना स्पष्ट निर्णय है। तो इस भूत को मैं पाल रहा हूं, इस भूत का मैं रोज शिकार हो रहा हूं। जो अमृत रूप ईश्वर है, जो परमेश्वर है, वो मंत्र रूप में मुझको प्राप्त है, इस देह के अंदर उनके और अवतार के रूप भी अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जब मैं उनकी ईश्वर की या गुरु की जब ये बात मान लेता हूं कि मंत्र जो खुद ईश्वर का अवतार है, उसका संग जब मैं प्रेम से करता हूं, नियम धारण करके करता हूं, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा जीवन में समझता हूं, तब मुझको ईश्वर का निरंतर संग अंदर ही प्राप्त हो जाता है। और बीच में यदि डेथ आ भी गई तो जिस प्रकार अर्जुन कह रहा है कृष्ण से गीता में कि मैंने इस जन्म में मेहनत भी की, फाइनल चीज मुझे प्राप्ति नहीं हुई या मोक्ष मुझे प्राप्ति नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं जो कमाई मैंने की अध्यात्म मार्ग में, ईश्वर मार्ग में, वो सब बेकार चली जाए, बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाए। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, तूने जो भी कमाई इस जन्म में कर ली उसकी रक्षा मैं करता हूं, बचपन से ही तुझको एज इट इज प्राप्त हो जाएगी। यहां बैंक में जितना बैलेंस बचेगा, जो कुछ मैंने अल्फाबेट सीखे थे, जो एजुकेशन ली थी, जो डिग्रियां ली थी, ये तो सारी लोप हो जाएंगे। संसार इसको बचा नहीं सकता, आप इसको बचा नहीं सकते, अगला जन्म फिर आपको एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं इस प्रभु मार्ग में जो तूने मेहनत कर ली, वो सारी संपत्ति जो अर्जित कर ली, वो तुझको बचपन से ही मिल जाएगी, और जो कसर रह गई है उसके लिए मैं तुझको साधन प्रदान करूंगा। अब बताइए कितनी बड़ी गारंटी है, गीता में भगवान कृष्ण कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, और वाणी भी आपको यही गारंटी दे रही है। गुरु का जीवन देख लो कि महाराज जी 3 वर्ष की आयु में खुद कहा उन्होंने ये बात कि जब इनकी 3 वर्ष की आयु थी तब इनको पूरा बोध था कि संसार क्या है और ईश्वर क्या है, और बचपन से ही वो सारी रात प्रभु की याद में, प्रभु के आनंद में लीन रहते थे, और 9 वर्ष की आयु में उन्होंने जंगल में भी जाना शुरू कर दिया था। तो सारी संपत्ति वापस दी या नहीं दी प्रभु ने, तो कृष्ण की बात गीता की झूठ नहीं है, वो सत्य बात है। इसलिए जो कमाई मेरे साथ जानी है, जो एज इट इज मुझको बचपन से मिल जानी है, जिसमें कुछ गायब नहीं होगी, तो मैं उस कमाई को इकट्ठी करूं ताकि इस जन्म में भी मेरे मन की जो बेचैनी है या मन के कारण जो मैं बेचैन रहता हूं वो मेरी बेचैनी दूर हो, और वो कमाई अगले जन्म में भी मेरे काम आए, जो ईश्वर भक्ति की कमाई है। इसीलिए मानव जन्म ईश्वर भक्ति के लिए मिला है, ये काम मैं पूरी सिंसेरिटी से, पूरी गंभीरता से करूँ ताकि मेरा जीवन का वक्त आगे बेकार ना हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।